लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। इल वांजेलो के लेजामो नेला लिटुर्जिया दी क्वेस्टा डोमेनिका ci racconta l'incredulità dei compa anziani di Gesù.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज का सुसमाचार हमें यीशु के गांव वालों के अविश्वास के बारे में कहता है। गलीलिया के दूसरे गांव में उपदेश देने के बाद यीशु नाजरेत आते हैं, जहां वे मरियम और योसेफ के संग पले बढ़े थे। एक रविवार को वे यहूदियों के मंदिर में शिक्षा देने लगे। उनके सुनने वालों में से बहुतों ने अपने में यह सवाल किया, उसे यह ज्ञान कहां से मिला? लेकिन क्या यह बढ़ी और मरियम का बेटा नहीं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं? इस तरह की प्रतिक्रिया का उत्तर यीशु एक प्रसिद्ध कहावत से देते हैं, एक नबी का अपने गांव में सम्मान नहीं होता। हम इसे बार बार कहते हैं। संत पापा ने कहा, हम यीशु के गांव वालों के मनोभावों पर चिंतन करें। हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। जानने और पहचानने में एक अंतर है। एक अर्थ में हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, उसके एक विचार, उसके बारे में दूसरों से सुनकर कि वे क्या कहते हैं। हम शायद उस व्यक्ति से यदा कदा अपने पड़ोस में मिलते हुए उसे जान सकते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। यह एक ज्ञान मात्र है जो अपने में साधारण छिछला है। इसके द्वारा हम व्यक्ति के विशेषता को नहीं पहचानते हैं। हम सभी इसी जोखिम में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इससे भी खराब तब होता है जब हम उस व्यक्ति को अपने पूर्वग्रह के कारण एक तरह से अपनी अवधारणा में सीमित कर देते हैं। यीशु के गांव वाले उसे 30 सालों से एक ही तरह से जाना और उन्होंने सोचा कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या यह वही लड़का नहीं है जिसे हमने बढ़ते देखा, मरियम और बढ़ी का बेटा? उसे ये सारी चीजें कहां से मिली? वे सच्चाई में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यीशु के बारे में सच्चाई का अनुभव कभी नहीं किया। वे केवल बाहरी सतह तक बने रहे और यीशु के नए रूप को स्वीकार नहीं किया। संत पापा ने कहा, और यहीं हम मुसीबत की जड़ को पाते हैं।
Quando facciamo prevalere la comodità dell'abitudine e la dittatura dei pregiudizi, è difficile aprirsi alla novità e lasciarsi stupire.
जब हम आदतन की सुविधा और पूर्वग्रह की तानाशाही को अपने में हावी होने देते, तो हम नई चीजों के लिए खुला होने और अपने को आश्चर्यचकित होने के लिए बंद कर देते हैं। हम अपने मनोभावों और अपनी पूर्व धारणाओं के कारण नियंत्रित किए जाते हैं। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अनुभवों से और यहाँ तक कि लोगों से भी उन बातों की चाह करते हैं जो हमारे विचारों और सोचने के तरीके से मेल खाता है, जिससे हमें अपने में बदलाव करना ना पड़े। हम ईश्वर के संग भी ऐसा ही पेश आते हैं और अपने पड़ोसियों के संग भी। हम अपने में ऐसा सोच सकते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम उन्हें इस हद तक जानते हैं कि उन्हें जानने हेतु चीजों को सदैव दोहराने की जरूरत नहीं है। उनका ज्ञान हमारे लिए काफी है, लेकिन नई चीजों के लिए खुला नहीं होते हुए और उससे भी बढ़कर उन्हें सुनने, ईश्वर के द्वारा आश्चर्यचकित होने हेतु खुला रहने के बिना हमारा विश्वास एक थकान भरी स्तुति बन जाती है जो धीरे धीरे मर जाती और यह केवल एक अभ्यास, एक सामाजिक आदत बनकर रह जाता है। संत पापा ने कहा, मैंने आश्चर्यचकित होने की बात कही। आश्चर्यचकित होना क्या है?
Lo stupore proprio quando succede l'incontro con Dio.
यह तब होता है जब हमारा मिलन ईश्वर से होता है। हम बहुत बार सुसमाचार में पढ़ते हैं कि बहुत बार वे लोग जिन्होंने यीशु से मिला और उन्हें पहचाना, उन्हें आश्चर्य की अनुभूति हुई। ईश्वर से हमारा मिलन हमें इस राह में चलने को मदद करे, हम अपने में आश्चर्यचकित हों। यह हमारे लिए प्रतिज्ञा पत्र की भांति है कि ईश्वर से मिलन सत्य है, न कि रिवाजी कार्य। अंततः क्यों यीशु के गांव वालों ने उन्हें नहीं पहचाना और उनमें विश्वास नहीं किया? क्यों? इसके क्या कारण है?
Possiamo dire in poche parole che non accettano lo scandalo dell'incarnazione.
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने देह धारण के ठोकर को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शरीर धारण के इस रहस्य को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने इसका कारण नहीं जाना और इसे एक कलंक की तरह देखा कि ईश्वर की दिव्यता शरीर में कैसे प्रकट हो सकती है। ईश्वर का पुत्र बढ़ई का पुत्र कैसे हो सकता है? ईश्वर का चेहरा, उसके शब्द साधारण व्यक्ति के कार्यों में कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं? यह अपने में एक ठोकर के समान है। ईश्वर का शरीर धारण करना दैनिक जीवन में उनका साक्षात रूप। ईश्वर हमारे लिए नाजरेत के यीशु में मानव के रूप में आए। वे हमारे लिए राह में एक मित्र बने। वे हमारी तरह बन गए।
तू सही उनो दी नोई दिरा यीशु बेला प्रेगेरा।
आप हम में से एक हैं, हम यीशु से यह कह सकते हैं। यह कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम में से एक हमें समझता है, हमारे साथ रहता, हमें क्षमा करता और हमें इतना अधिक प्रेम करता है। वास्तव में एक अमूर्त दूर में रहने वाले ईश्वर से हम अधिक सहज महसूस करते हैं, जो हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सहभागी नहीं होते, जो दूर से हमारे विश्वास, तकलीफों को, समाज को स्वीकार करते हैं, या हम विशेष प्रभावकारी कार्यों में विश्वास करना चाहते हैं जिसे ईश्वर खास रूप में करते हैं, जो हम में विशिष्ट मनोभावों को उत्पन्न करता है। इन सारी चीजों के बदले ईश्वर हमारे लिए शरीर धारण करते हुए नम्र, विनीत और गुप्त रूप में हमारे निकट आते हैं। वे हमारे सामान्य जन जीवन का अंग बनते हैं। यीशु के गांव वालों के साथ यही होता है, वे उन्हें नहीं पहचानते हैं। यह हमारे साथ भी होता है, वे हमारे बीच से पार होते और हम उन्हें नहीं पहचानते हैं। संत पापा ने संत अगस्टिन के सुंदर वचनों को दोहराते हुए कहा, मुझे ईश्वर का भय है, प्रभु का, कि वे कब मेरे निकट से गुजर जाएं। लेकिन अगस्टिन, तुम क्यों डरते हो?
Ho paura di non riconoscerlo. Ho paura del Signore quando passa.
मैं डरता हूँ कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा। मैं भयभीत हूँ कि वे कब मेरे निकट से होकर गुजर जाएं। हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, हम उनके द्वारा ठोकर खाते हैं। हम इस सच्चाई के बारे में चिंतन करें। हम माता मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने ईश्वर के रहस्य को नाजरेत के दैनिक जीवन में स्वागत किया, जिससे हमारी आँखें और हमारे हृदय पूर्व ग्रहों से मुक्त हो सके, हमारी आँखें आश्चर्य हेतु खुली रहें, हे प्रभु हम आपसे मिल सकें। जब हम उनसे मिलेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। हम सामान्य जीवन में उनसे मिलते हैं जहां हमारी आँखें विस्मय में खुली रहती हैं, क्योंकि वे नम्र और गुप्त रूप में हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित रहते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Jesu tu hai mahan, sare jagat mein mahan. Tu mera bal, mera praan, tu mere jeevan ki shaan. Yesu tu hai mahaan. अंधियार गलियों में भी रक्षा मेरी तू है करता, जब जब मैं पथ भूल जाता आके मुझे तू संभालता, तू ही है मेरा जीवन सहारा, तू ही है मेरा जीवन सहारा, तुझ में ही मुझको भरोसा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार को एकत्र हुए विश्वासियों के साथ संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उसके बाद दोपहर में संत पापा फ्रांसिस को वाटिकन का सासांता मार्था से रोम स्थित जमेली पॉलीक्लिनिक ले जाया गया। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने पत्रकारों को बताया कि संत पापा का वृहदांत का एक रोग सूचक डाइवर्टिकुलर स्टेनोसिस की एक निर्धारित सर्जरी की गई। संत पापा का ऑपरेशन प्रोफेसर सर्जो अल्फियरी ने किया। डॉक्टर अल्फियरी अस्पताल के चिकित्सा और सर्जिकल विज्ञान विभाग में है और डाइजेस्टिव सर्जरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यूनिट के प्रमुख हैं। वे सामान्य रूप से पाचन, क्लोन, रेक्टल, अग्नाशय की सर्जरी में विशिष्ट हैं। मतेओ ब्रूनी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद संत पापा अच्छी हालत में हैं। संत पापा के जमेली पोली क्लिनिक जाने की खबर सुनते ही रविवार को इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला ने संदेश भेजकर स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति सर्जो ने संदेश में लिखा कि वे फ्रांस की राजकीय यात्रा पर हैं और पेरिस में उन्हें जमेली पॉलीक्लिनिक में उनकी भर्ती होने के बारे में पता चला। वे इटली के सभी लोगों तथा अस्पताल के स्टाफ के साथ इस समय संत पापा के साथ हैं, साथ ही एक अच्छे स्वास्थ्य लाभ, बेहतर और शीघ्र स्वास्थ्य होने की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। संत पापा फ्रांसिस के ऑपरेशन के बाद रोम धर्म प्रांत की ओर से शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के साथ विज्ञप्ति जारी किया गया। रोम का धर्म प्रांतीय समुदाय हमारे धर्माध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस के निकट है और बीमारी की इस घड़ी में उनके प्रति अपना सारा स्नेह और पुत्र भक्ति व्यक्त करता है। रोम के विश्वासी नागरिकों और अच्छी इच्छा वाले सभी लोगों के साथ संत पापा की निकटता की गहरी भावना के साथ प्रभु से निवेदन करते हैं कि वे हमारे प्रिय धर्माध्यक्ष को ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ और सांत्वना दें। रोम धर्म प्रांत के विकार कार्डिनल एंजेलो दी डोनातिस और धर्माध्यक्ष सम्मेलन, रोम के सभी पल्ली पुरोहित, सभी पल्ली के कार्यकर्ता, धर्म संघी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं सहित रोम की पूरी कलीसिया संत पापा फ्रांसिस के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती है। रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र इस्वातिनी की अशांति और हिंसा की खबरों को याद किया। संत पापा ने देश के अधिकारियों और देश के भविष्य के इच्छुक लोगों से अपने मतभेदों के लिए संवाद, सुलह और शांतिपूर्ण समाधान हेतु मिलकर काम करने का आह्वान किया।
संत पापा ने यह भी कहा कि उन्हें 12 से 15 सितंबर तक स्लोवाकिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यात्रा सबसे पहले हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट की यात्रा के साथ शुरू होती है। वहां वे 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस के समापन समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने यात्रा के आयोजन और तैयारी करने वाले सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, उनके लिए प्रार्थना की और सभी को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक निदेशक मतेव ब्रूनी ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद एक बयान जारी किया कि संत पापा फ्रांसिस ने हंगरी के नागर अधिकारियों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। रविवार 12 सितंबर 2021 को संत पापा फ्रांसिस 12वें अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस के समापन पर पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करने के लिए बुदापेस्ट में रहेंगे। बाद में 12 से 15 सितंबर तक वे स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। वहां वे ब्रातिस्लावा, प्रेसोव, कोसीसे और सास्टिन शहरों का दौरा करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने जब बुदापेस्ट और स्लोवाकिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा की घोषणा की तो संत पेत्रुस प्रांगण में उपस्थित स्लोवाकिया से आए तीर्थयात्रियों ने अपने देश का झंडा हाथों में लहराते हुए तालियां बजाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। पूर्वी यूरोप के संवाददाता स्टीफन बोस ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस के लिए उन भावनाओं को स्लोवाकिया में भी दोहराया गया है, जहां स्लोवाकिया धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने बहुत खुशी के साथ समाचार का स्वागत किया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान कोरकोक ने इस यात्रा को स्लोवाकिया के लिए एक महान सम्मान के रूप में वर्णित किया, जबकि देश के राष्ट्रपति जुजाना कपुतोवा ने कहा, मेरा मानना है कि इस कठिन समय में संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति हम सभी के लिए सुलह और आशा का संदेश होगी। और 84 वर्षीय येसु समाजी फादर स्टेन स्वामी अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु आज यानी 5 जुलाई को हुई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से 30 मई को उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और सोमवार यानी 5 जुलाई को उनका निधन हो गया। फादर स्टेन स्वामी के निधन की सूचना बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। एल्गार परिषद मामले में आरोपी रहे स्टेन स्वामी पार्किंसन समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे और पिछले महीने वे कोविड पीड़ित भी हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान उनके वकील ने इस बात की जानकारी दी। जमशेदपुर प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर जेरी कुटीनो ने सूचित किया कि दलित और गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु काम करने वाले जमशेदपुर प्रोविंस के सदस्य 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु से पूरा येसु धर्म समाज दुखित है। फादर स्टेन स्वामी 64 वर्ष तक येसु समाज के सदस्य और 51 वर्ष तक पुरोहित के रूप में अपना जीवन बिताया। जमशेदपुर प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर जेरी फादर स्टेन स्वामी के परिवार के सदस्यों, मित्रों, वकीलों और उनके शुभ चिंतकों को हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जेल में दुख में उनका साथ दिया और उनके लिए प्रार्थना की। फादर जेरी ने फादर स्टेन स्वामी के जीवन दान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि फादर स्टेन स्वामी के अंतिम संस्कार के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।